اسمی اعظم اس کا ترجمہ ہے فارسی میں اسمی بزرگ، یعنی بڑا نام خدا کا. یہ بڑا نام خدا کا اپنے وقت میں رسول تھے، رسول کے بعد اساس یعنی علی تھے، خدا کا اسم اعظم، اور علی کے بعد زمانے کا امام، ہر زمانے کا امام خدا کا اسم اعظم ہوا کرتا ہے. تو پیر نصر خسرو نے اپنی مشہور کتاب میں اس کی ایک بہت ہی خوبصورت مثال پیش کی ہے. فرماتے ہیں کہ اللہ اکبر خدا کا بڑا نام ہے یا رسول خدا کا بڑا نام ہے. پھر کہتے ہیں کہ اگر کتے پر اللہ اکبر کہہ کر ذبح کیا جائے تو وہ ہرگز حلال نہیں ہوگا، چونکہ خدا نے اور رسول نے اس کو حرام قرار دیا ہے. اس کے مقابلے میں اگر رسول فرمائے کہ آج سے خدا کے حکم سے یہ کتا حلال ہو گیا تو وہ حلال ہی ہو جائے گا. اس مثال سے پتہ چلا کہ اللہ اکبر خدا کا بڑا نام نہیں ہے، رسول خدا کا بڑا نام ہے. تو پھر اسی مثال سے اسم اعظم کے بارے میں سمجھاتے ہیں. آج خدا کے لکھے ہوئے لفظی اسماء نیمز بہت ہیں، اور مسلمان ان میں سے کسی کو لے کر عبادت پر بیٹھتا ہے اور پڑھتا جاتا ہے، بہت ریاضت کرتا ہے، بہت محنت کرتا ہے، لیکن اس پر روحانیت کا دروازہ نہیں کھلتا ہے. لیکن جب امام اپنے کسی مرید کو کوئی بھی لفظ، کوئی بھی اسم اسم اعظم کے طور پر دے دیتا ہے اور کچھ عرصے کے لیے وہ مومن ریاضت کرتا ہے، تو اس کو روشنی نظر آتی ہے اور روحانیت کا گیٹ کھل جاتا ہے. تو دیکھا آپ نے کہ خدا کا اسم اعظم کس طرف ہے، کتاب کی طرف ہے یا امام کی طرف ہے. ظاہر بات ہے کہ امام ہی خدا کا اسم اعظم ہے، اس لیے کہ روشنی یہاں ہے، روحانیت کا دروازہ یہاں سے کھل جاتا ہے. تو چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے وقت میں خدا کا بزرگ نام تھے. آپ کے جانشین مولانا علی اپنے وقت میں خدا کے بزرگ نام تھے. علی اساس کے بعد ہر امام اپنے وقت میں خدا کا سب سے بزرگ، سب سے بڑا نام ہوا کرتا ہے. تو یہ ہے. اس کے بعد کتاب کی کیا تعویل ہے؟ کتاب، سب لوگ کہتے ہیں کہ یہ کتاب ہے اور قرآن بھی کتاب ہے، اور کتاب کا مطلب نوشتہ ہے، لکھا ہوا، ریٹن. لیکن تعویل میں کتاب سے اساس مراد ہے، اساس مراد ہیں، یعنی علی مراد ہیں، اور علی کے بعد اللہ کی کتاب امام ہے. اللہ کی بولنے والی کتاب، اللہ کی زندہ کتاب، اللہ کی نورانی کتاب امام ہے. اور اس لیے کہ خدا کی چیزیں بہترین ہوا کرتی ہیں. اگر خدا کہتا ہے کہ میرا قلم، تو یہ اللہ کا قلم انسانوں کے قلم جیسا نہیں ہوگا، وہ کوئی اور چیز ہوگا، یعنی ایک نور ہوگا، ایک شخصیت ہوگی، پیغمبر ہوگا اور امام ہوگا. اس لیے کہ خدا کی چیزیں اور انسانوں کی چیزیں الگ الگ ہیں. تو خدا جب قرآن میں کتاب کہتا ہے تو اس کتاب سے امام ہی مراد ہوتے ہیں. اسی طرح صراط مستقیم یا صراط المستقیم، لفظی ترجمہ تو راہ راست ہے، لیکن یہ صراط المستقیم کیا چیز ہے؟ ये सिरात अल मुस्तकीम पैगंबर हैं सबसे पहले, वो सीधी राह की जिस पर चलने से खुदा तक जाया जाता है, वो रास्ता, वो सिरात अल मुस्तकीम सबसे पहले पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उनके बाद असास ही सिरात अल मुस्तकीम है, उनके बाद जमाने का इमाम सिरात अल मुस्तकीम है। इस उसूल के मुताबिक जो अभी अभी कहा गया था कि खुदा की चीज़ें जिंदा हुआ करती हैं, खुदा की चीज़ें बेहतरीन हुआ करती हैं। जब खुदा फरमाता है कि मेरा घर, तो वो दुनिया का जिस्मानी और मादी घर नहीं होता है, वो एक जिंदा घर होता है, वो एक आला घर होता है, और वो खुदा का घर इमामी ज़मान है। इसी तरह खुदा का रास्ता इमामी ज़मान है। आप शायद सवाल करेंगे कि हर बात पर इमामी ज़मान का नाम लिया जाता है, और हर चीज़ खुदा की हर चीज़ इमाम होता है। हाँ, ऐसा ही होता है, इसलिए कि कुरान कहता है, कुरान फरमाता है कि वकुल शैइन अहसैनाहु फी इमाम मुबीन, हर चीज़ इमाम मुबीन में है, यानी हर हकीकत, हर नाम, हर इसम, हर मारिफत और हर शै इमाम है। किसी को शायद फिर भी इसमें ताज्जुब हो सकता है कि हर चीज़ कैसे इमाम हो सकता है, तो मैं आपको अर्ज करूँगा, दो जहान हैं, एक जहान, एक दुनिया, एक आलम, कसरत का आलम है कि उसमें चीज़ें अलग अलग हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बेशुमार चीज़ें हैं। इसके मुकाबले में एक आलम वो है जो एक ही चीज़ है और तमाम चीज़ों से कीमत में, कदर में बढ़कर है। शरीयत के तौर पर खुदा की मिसाल लीजिए, खुदा कितने हैं? एक है, वाहिद है। उसमें क्या क्या चीज़ें हैं? सवाल पैदा नहीं होता है कि उसमें, उसकी ज़ात में मुख्तलिफ चीज़ें हो जाएं। वो एक हकीकत है, वो एक नूर है, और वही बहुत है और सब कुछ है और सबसे बढ़कर है। देखा आपने, एक चीज़ ऐसी भी होती है जो तमाम चीज़ों से बढ़कर होती है, कदर में, कीमत में। एक छोटी मिसाल इसकी, आपने किसी दरख्त पर कयास किया होगा कि दरख्त को देखा जाए तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, शाखें हैं, पत्ते हैं, और किसी वक्त में उसमें कलियां भी होती हैं, फूल भी होते हैं, तना है, जड़ें हैं, छिलके हैं, और अज्जा हैं, पार्ट्स हैं, अलग अलग चीज़ें, लेकिन बिल आखिर उसमें से फल पैदा होता है, उस फल में मग़्ज़ होता है, और मग़्ज़ के अंदर दरख्त का सारा जौहर समोया हुआ होता है, दरख्त का सारा जौहर। आपको नज़र नहीं आएगा कि उस मग़्ज़ के अंदर जड़ भी है, पत्ता भी है, कली भी है, फूल भी है, छिलका भी है, लकड़ी भी है, और दरख्त के जितने अज्जा हैं वो सब उस मग़्ज़ के अंदर हैं। लेकिन किस तरह से हैं? एक यूनिटी है, एक वननेस है, और अलग अलग रंग में कोई चीज़ नहीं है, एक ही रंग में सारी चीज़ें। कैसे कह सकते हैं कि इसके अंदर छिलके हैं और शाखें हैं, पत्ते हैं, कलियां हैं, और फूल हैं, जड़ें हैं, छोटी जड़ें, बड़ी जड़ें, और सारी चीज़ें, सारे अज्जा, कैसे कह सकते हैं? ऐसे कह सकते हैं कि अब उस गुठली को उगाएं ज़मीन में, भोएं, कुछ अरसे के बाद उसी में से दरख्त का ज़ुहूर होगा, दरख्त पैदा हो जाएगा। तो ये दरख्त के मुख्तलिफ अज्जा, पार्ट्स कैसे और कहाँ से आ गए? पोटेंशियली उसी मग़्ज़ के अंदर ये सारी चीज़ें मौजूद थी। ठीक, इसी तरह कुछ हकीकतें ऐसी भी हैं कि वो एक हैं सिर्फ, लेकिन उनमें सब कुछ है। और खुदा की ज़ात को अगर नहीं लेते हैं तो खुदा के नूर का कियास करें कि खुदा के नूर से ये सारे लोग पैदा हो गए, अच्छे बुरे, मोमिन काफिर सब। ये मोमिनी ये काफिरी इस दुनिया में आने के बाद पैदा हो गई, लेकिन अजल में सारे इंसान एक नूर के अंदर इस फल के मगज की तरह एक थे, एक जैसे थे। तो ये मोनो रियलिटी की एक मिसाल हुई। मोनो रियलिटी भी ऐसी ही चीज़ है, दरख्त के अंदर, दरख्त के मेवे के अंदर, फल के अंदर जो गुठली है और गुठली में जो मग्ज है, तो वो मोनो रियलिटी की एक मिसाल है। इसी से ये सारी इंसानियत पैदा हो गई और दुनिया के मुख्तलिफ लोग पैदा हो गए, और फिर इनको ऊपर ले जाए तो वही दरख्त के मग्ज की तरह, और इनको नीचे लाएं तो दरख्त के अज्जा की तरह। कई दफ़ा ऐसा करें, तसव्वुर ही से, मिसाल ही से और सोच से इन तमाम लोगों को आलम बाला पर उठाएं तो सब एक नज़र आएंगे, और फिर इनको वापस दुनिया में लाएं तो फिर यहाँ इख्तलाफ नज़र आएगा, कोई मोमिन कोई काफिर, कोई अच्छा कोई बुरा वगैरह। तो इसी तरह इमाम की जात में सब कुछ है, सब कुछ है। जिस तरह दरख्त के मग्स के अंदर तमाम अज्जा हैं, और इसलिए इमाम ही सिराते मुस्तकीम है, इमाम ही किताब है, इमाम ही खुदा का इस्म आज़म है। और इसी माना में फरमाया गया कि वकुल शैइन असैनाहू फी इमामी मुबीन। अगर इसकी छोटी मिसाल पेश की जाए तो खुदा गोया कहता है इस कायनात के दरख्त का जौहर जो है वो इमाम में है, इसी जौहर से ये दुनिया की चीज़ें वजूद में आ गई, ये सारी इंसानियत, ये सारे इंसान। और दूसरी मिसाल ये है कि दुनिया के मामले में रास्ता अलग है, रास्ते पर चलाने वाला अलग है, और रास्ते पर चलने वाला अलग है, लेकिन रूहानियत में और आलम इबादत में देखा जाए रास्ता और रहनुमा एक ही, बल्कि सालिक भी उसी से मिलकर आगे बढ़ता है। और दूसरा उसूल ये है कि खुदा की तमाम चीज़ें जिंदा हुआ करती हैं, दुनिया की चीज़ें कुछ बेजान हैं, कुछ जानवर हैं, कुछ दरख्त हैं, कुछ इंसान हैं, लेकिन खुदा की चीज़ें एक शख्सियत में सब जमा हैं। और दुनिया में बेहतरीन शख्सियत और सबसे आला शख्सियत इंसान कामिल की है, इमाम की है, उसी इमाम के अंदर खुदा की सारी चीज़ें जमा हैं। दुनिया के हुनर और साइंस से आप पूछें कौन सी मशीन बेहतरीन हो सकती है, ऐसी मशीन जिसमें बहुत सारे काम हों, उसमें बहुत सारे काम हों। और साइंस की मिसाल में उसी में दूरबीन भी हो, रेडियो भी हो, टेलीविज़न भी हो, वायरलेस भी हो, एक ही सेट में बहुत सारी चीज़ें जब होंगी तो उसी की तारीफ की जाएगी और उसी हुनर को सराहा जाएगा और वही बेहतरीन चीज़ होगी। बिल्कुल इसी तरह खुदा की एक चीज़ है जो सबसे बेहतरीन है और उसमें तमाम चीज़ें हैं, वो इमाम है, तमाम चीज़ें हैं तो उसमें खुदा भी है। ये आखिरी बात है। इसके अलावा खुदा ने घर की मिसाल दी है, अपनी घर की मिसाल पेश की है, और वो खाना काबा है, लेकिन खाना काबा हकीकी मानों में खुदा का घर नहीं है, मिसाल के तौर पर खुदा का घर है। तो फिर वो हकीकी मानों में जो खुदा का घर है और जिसको ये खाने काबा शो करता है या इंडिकेट करता है वो घर कौन सा है? वो इमाम है। इमाम को दिखाने के लिए एक मादी घर को खुदा का घर कहा और खुदा का घर करा दिया, तो वो खुदा का घर इमाम है। यानी इमाम की जात में खुदा को जिस कैफियत में होना चाहिए, जिस रंग में होना चाहिए, जिस रूप में होना चाहिए, उस रूप में इमाम की जात के अंदर खुदा है। जबकि हदीस कहती है कि बंदई मोमिन का दिल खुदा का घर है। अब आप ही बताइए कि हकीकी मानू में बंदई मोमिन कौन है? आप ही, हम ही या इमाम है? तो सबसे पहले मोमिन पैगंबर है, इमाम है। तो फिर इसका मतलब यह हुआ कि इमाम के दिल में खुदा है, पैगंबर के दिल में खुदा है। यह तरह तरह से समझाने का तरीका है। और आप जिस मजमून को सामने लाएंगे और जिस सवाल को पेश करेंगे, हम उसी सवाल में यह साबित करेंगे कि इमाम की जात में खुदा है। तो जितनी हदीसों में मोमिन की तारीफ की गई है और मोमिन का रिश्ता खुदा के साथ ऐसा है, तो ये सारी सिफात सबसे पहले इमाम पर इनका इतलाक होता है। अगर ये कहा जाए कि बंदा मोमिन का दिल खुदा का आईना है कि जिसमें खुदा का दीदार होता है, तो आप ही बताइए कि ये सिफत सबसे पहले किसकी होगी और किसके लिए मुनासिब होगी? इमाम ही के लिए होगी, इमाम ही के लिए होगी। और इसी सिलसिले की एक और मिसाल कि इहज़रु फिरासतिल मोमिन फइन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह। पैगंबर ने फरमाया कि मोमिन की फिरासत से, होशमंदी से डरो, क्योंकि वो खुदा के नूर की रोशनी में देखता है। ये किन से फरमाया जाता है और किसके बारे में फरमाया जाता है? वो ऐसा मोमिन कौन है जो खुदा के नूर से देखता है? आप हैं, आप दावा कर सकते हैं, हम दावा कर सकते हैं, या और कोई है दुनिया में जिसे कि हम डरे, इसलिए डरे कि वो खुदा के नूर की रोशनी में देखता है? तो इस जरूर मिन फिरासतिल मोमिन फइन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह। नाम के मोमिन तो सब हैं, और ये तनबीह है, वार्निंग है। पैगंबर वार्निंग देते हैं कि एहतियात करो, डरो, क्योंकि जो मोमिन है वो खुदा के नूर की रोशनी में देखता है। मेरे ख्याल में ये इमाम की शान में है कि इमाम ही खुदा के नूर की रोशनी में देखता है। हकीकी मोमिन वही है। हम में से किसी को ये तजुर्बा नहीं है कि खुदा के नूर की रोशनी में इंसानों के उयूब को देखा, इंसानों की कमजोरियों को देखा। ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती है। तो लेकिन देखें, यानी लोग क्या क्या कहते हैं, तो इसमें खुद को शरीक करने के लिए कोशिश करते हैं, इस सिफत में शामिल होने के लिए कोशिश करते हैं। ये लोगों की आदत है। लेकिन सारी चीजें इमाम में जमा हो जाती हैं, सारी सिफात इमाम को पहुंचती है, सारी तारीफ इमाम की होती है। लिहाजा खुदा का मजहर आप कह सकते हैं। मजहर का क्या मतलब? यानी जहूर, के खुदा का जो जहूर है और खुदा की जितनी सिफात हैं वो इमाम में है। मिसाल के तौर पर कुरान में देखें, आयत नूर में देखें, नूर जो इस्म है वो अल्लाह का है। लेकिन फिर ये पैगंबर की तरफ जाता है, उसके बाद ये लफ्ज़ नूर और इसके मानी इमाम की तरफ जाते हैं। अल्लाह नूर समावात वल अर्ज, अल्लाह आसमानों का नूर है और जमीन का नूर है। अच्छा, तो अगर अल्लाह आसमानों का नूर है और जमीन का नूर है, तो क्या इसी अल्लाह का नूर होना काफी नहीं है? क्या खुदा के नूर की रोशनी कायनात और मौजूदात को नहीं पहुंच सकती है? तो फिर दूसरा नूर क्यों है? फिर रसूल को नूर क्यों कहा गया? फिर इमाम को नूर क्यों कहा गया? क्या इस कायनात मौजूदात में एक से ज्यादा अनवार के होने में पहले नूर की कमजोरी और कमी साबित नहीं होती है? इस माना में कमजोरी और कमी की जो पहला नूर था, जो खुदा का नूर था, उसमें क्या कमी थी? कहां ये नूर नहीं पहुंच सकता था कि दूसरे नूर की जरूरत पेश आई और तीसरे नूर की जरूरत पेश आई? या ये हमसे इम्तिहान है, आजमाइश है, क्या हम किस तरह समझते हैं, कैसा सोचते हैं? नूर को एक होना चाहिए, एक, क्योंकि कामिल और मुकम्मल नूर हम उसको कहेंगे जो आसमान और जमीन को और हर चीज को मुनव्वर कर सके। दो नूरों को मानने से कमजोरी और आयब का तसव्वुर होता है, ऐसा नहीं है। एक ही नूर है, उसी नूर का नाम खुदा है, उसी नूर का नाम रसूल है, उसी नूर का नाम इमाम है। वहदत की बात हो रही है और इमाम में सब कुछ होने की जो बात है उसकी तशरीह हो रही है। वकुल्ला शहीन आसाइन हुफी इमामी मुबीन कि आपने कई दफ़ा तशरीह की होगी और उस्तादों ने भी तशरीह की होगी। मैं कहता हूँ ये तशरीह काफ़ी नहीं है, इसकी बहुत सी तशरीहें हैं, इसकी बहुत सी वजाहतों की ज़रूरत है। और आगे चलिए इसी सिलसिले में, कुल शैन हालिक वजहू, हर चीज़ हलाक हो जाने वाली है और हलाक हो जाती है, लेकिन उसका चेहरा, खुदा का चेहरा हलाक नहीं होता है। देखा आपने, खुदा शेई के जुमरे में आ गया और अशिया में से एक शेई हो गया, चीजों में से एक चीज करार पाया, क्योंकि गुफ्तगू और ग्रामर का ये उसूल है कि इल्ला और मगर आप उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जबकि एक जैसी चीजों का तस्करा हो रहा है और कहा जा रहा है कि सारे लड़के हाजिर थे मगर अहमद हाजिर नहीं था। इस लफ्जी मगर से एक शख्स का इस्तिस्ना हो जाता है, एक्सेप्शन हो जाता है। तो कुल शैन हालिक में यह अंदेशा पैदा हो गया कि हर चीज हलाक हो जाती है और इससे आगे कुछ न कहा जाता और इसी पर सिताब लगाया जाता, तो ये शुबा पैदा होता कि शायद खुदा भी नऊज़ु बिल्लाह मिन्हा हलाक हो जाने वाला है, क्योंकि यहाँ कुल शेई के साथ खुदा का चेहरा भी आ गया। इस शक को दूर कर देने के लिए इल्ला वजहू का हिस्सा आया इस आयत में, फिर यकीन आया कि तमाम चीज़ों के साथ चेहरा खुदा भी शामिल तो है लेकिन हर चीज़ हलाक हो जाती है मगर खुदा का चेहरा हलाक नहीं होता है। यहाँ खुदा का चेहरा सिर्फ इस चेहरे के लिए नहीं आया बल्कि नुमाइंदगी के तौर पर एक शख्सियत के लिए आया और वो शख्सियत अली है, क्योंकि अली साहिबी तावील थे। तो आन जनाब ने तावील के सिलसिले में सबसे पहले फरमाया कि अना वजहुल्लाह, मैं अपनी कामिल शख्सियत के साथ चेहरा खुदा हूँ, खुदा का चेहरा हूँ। तो ये अली का फरीजा बनता था कि वो हमको समझाए तावील को कि वजहुल्लाह की क्या तावील हो सकती है। तो उन्होंने समझाया हमको अपनी ज़ाहिर शख्सियत के ज़माने में, और अली हर ज़माने में मौजूद है। अपनी औलाद के इमामों के सिलसिले में और हर इमाम की शख्सियत में अली ही का नूर है, इसलिए कि चेहरा खुदा को हलाक नहीं होना है। और अगर अली जो चेहरा खुदा है उसको हलाक हो जाना होता तो आज दुनिया में इमाम मौजूद ना होता। और इमाम की खूबियों में से एक बड़ी खूबी ये है कि कि वो हर जमाने में मौजूद हुआ करते हैं। इस मिसाल में हमने ये साबित किया कि खुदा को शय थिंग कहने का जवाज है, जवाज कुछ और है, हकीकत कुछ और है। यानी समझाने के लिए खुदा ने खुद को शय या चीज कहा है, हरचंद की वो चीज नहीं है, चीज से बालातर है। लेकिन आपको किताबों में भी ये तذکرہ मिलेगा कि जो कुरान की तालीम है उसको हासिल करने के सिलसिले में खुदा को चीज कहा जाता है और कहा जा सकता है। अच्छा, ये कि कुल शय में खुदा का जिक्र भी शामिल है, और कुल शयन आसाइना हो फी इमाम मुबीन की इस आये शरीफा में ये जिक्र है, ये बयान है, ये वजाहत है कि इमाम की जात में हर चीज के साथ साथ खुदा की मारिफत भी है, खुदा का दीदार भी है। खुदा से क्या मुराद है? खुदा से दीदार मुराद है। खुदा से क्या मुराद है? खुदा से एक मारिफत मुराद है, एक नूर मुराद है, और एक हकीकत मुराद है। तो इन मानों में खुदा एक चीज है, ये जवाज है। इसलिए तावील की जरूरत है, और बहुत ही जरूरत है। अगर तावील नहीं तो कुछ भी नहीं। तावील क्यों जरूरी है? और तावील का दूसरा नाम क्या है? तावील का दूसरा नाम विजडम है, हिकमत है। वह मैं यू तल हिकमत फकत उती अखेरन कसीरा, और जिसको हिकमत दी जाती है तो समझ लीजिए कि उसको बहुत सी भलाई, बहुत सी खैर मिल जाती है। इसका मतलब यह हुआ कि इस्लाम में हिकमत के बगैर कुछ भी नहीं है, और हिकमत तावील है, और तावील के बगैर कुछ नहीं है, और तावील के बगैर बहुत से सवालात पैदा हो जाते हैं, बहुत से सवालात पैदा हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर कुरान का एक ताकीदी हुक्म है, सब मिलकर मजबूती से थामे रहो, मामूली तौर से पकड़ो नहीं, मजबूती से थामे रहो। अब खुदा की रस्सी की जब तक तावील ना की जाए तो बात समझ में नहीं आएगी। अगर खुदा की रस्सी दुनिया की एक डोरी है या दुनिया की एक रस्सी है तो इसकी कोई तावील नहीं है। अगर दुनिया में खुदा की ऐसी रस्सी नहीं है जैसे जैसे लोगों की रस्सी होती है तो फिर इसकी तावील है। हर चंद की लोग तावील करने की हिम्मत नहीं करते हैं और कहते हैं कि तावील तो बस खुदा ही जानता है और खुदा के सिवा कोई नहीं जानता है। इस ख्याल की कोई मंतिक नहीं बनती है। अगर तावील सिर्फ खुदा जानता है और खुदा के सिवा कोई नहीं जानता तो फिर तावील की अहमियत क्यों है? तावील का जिक्र क्यों है? और तावील हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को क्यों सिखाई गई? ऐसी बात नहीं है, तावील बेशक खुदा जानता है, रसूल जानता है और इमाम जानते हैं। अगर तावील जानने की कोई इम्कानियत नहीं है तो फिर खुदा की रस्सी की तावील ये लोग क्यों करते हैं? इसलिए कि कोई भी ये नहीं कह सकता है कि अल्लाह की रस्सी कोई आम रस्सी है जो बाजारों में मिल सकती है, जो देहातों में इस्तेमाल होती रही है, जो लोग बनाते हैं उसको ये वो रस्सी है। तो कोई नहीं कह सकता है। अल्लाह की रस्सी कुछ और है और उसकी तावील अपनी हैसियत के मुताबिक कहते हैं। कोई कहता है कि अल्लाह की रस्सी इस्लाम है, कोई कहता है कि अल्लाह की रस्सी कुरान है। तो ये तावील हो गई उनकी तरफ से, उनकी हैसियत के मुताबिक, उनकी दानिश के मुताबिक, उनकी अकल के मुताबिक। हम पूछते हैं कि अल्लाह की रसी इस शर्त के साथ है कि अगर सारे मुसलमान बिल इत्तिफाक अल्लाह की रसी को मजबूती से थामे रहें तो वो मुत्तहिद हो जाएंगे और फिरका फिरका होने का सवाल पैदा नहीं होता है। रसी की खूबी ये है, रसी की, अल्लाह की रसी की ये खुसूसियत है। लेकिन आज हम देखते हैं कि सब लोग कुरान के लिए इतराफ करते हैं, कायल हैं, मानते हैं, इस्लाम को भी मानते हैं, तो फिर ये फिरका फिरका क्यों है? क्योंकि रसी की ये खूबी ये थी अल्लाह की रसी की कि जो लोग अल्लाह की रसी के लिए कायल हो जाएं और उसको मजबूती से थामे रहें तो वो एक दूसरे से अलग हरगिज़ नहीं होंगे। ऐसी शर्त थी, ऐसी खूबी थी, ऐसी खसूसियत थी। तो ये तावील जो कहा गया कि कुरान अल्लाह की रसी है, ये तावील जो कहा गया कि इस्लाम अल्लाह की रसी है, ये दुरुस्त नहीं है। किस तरह दुरुस्त नहीं है, हम मजीद इसकी रिसर्च करना चाहते हैं। ये कि रसी अल्लाह की रसी एक कामिल शख्सियत हुआ करती है। चलिए ज़माने नबूवत की तरफ जाते हैं, हिस्ट्री में जाते हैं। अल्लाह की रसी अपने वक्त में रसूल अकरम थे। सबूत इसका यह है कि सारे मुसलमान मुत्तहिद थे उसी रसूल की बदौलत, उसी रसूल की वजह से। तो हम मानते हैं कि अल्लाह की रसी एक शख्सियत में होती है, कामिल शख्सियत में होती है, और वो शख्सियत रसूल की थी। इस माना में रसूल की शख्सियत अल्लाह की रसी थी और जिसको पकड़े हुए थे सारे मुसलमान मुनसलिक थे, तो फिर वो मुत्तहिद थे। अभी कुछ लम्हात पहले कहा गया था कि अल्लाह की हर चीज़ जिंदा हुआ करती है, जिंदा, और अल्लाह की चीज़ बेहतरीन होती है। तो रसूल अपने वक्त में अल्लाह की रसी थे, इसका सबूत यह कि सारे मुसलमानों का मुत्तहिद रहना एक होना। अच्छा, बिल्कुल रसूल के बाद भी एक शख्सियत का होना जरूरी है जो अल्लाह की रसी कहलाए, और वो अल्लाह की रसी इस्माइलियों के नज़दीक सही मानों में इमाम की शख्सियत है। अगर कुरान को और इस्लाम को मानते हुए इमाम की बात मानते, इताअत करते, तो अल्लाह की रसी की जो खसूसियत थी उसके मुताबिक सारे मुसलमान मुत्तहिद हो जाते हैं। जिस तरह आज इस्माइली रंग नस्ल में अलग हैं, जोग्राफियाई एतबार से जुदा जुदा हैं, और लेकिन इन बातों के बावजूद, इस रंग नस्ल के बावजूद और इलाकों ममालिक के इस इख्तिलाफ के बावजूद इमाम पर सब मुत्तहिद है। क्यों? इसलिए कि इमाम अल्लाह की रसी है और जिसको पकड़े रहने से लोग मुत्तहिद होते हैं। आयत ये कहती है, आयत का इशारा ये है, आयत का हुक्म ये है। और बिल्कुल दूसरे सारे मुसलमान भी इसी तरह, इस्माइलियों की तरह, इमाम के दामन अकदस को थाम लेते हैं। तो लाजिमी तौर पर सब मुसलमान ज़माना नबूवत की तरह एक हो जाते। इससे पता चला दानिशमंदों के नज़दीक के इमाम अल्लाह की रसी है। ठीक, इसी तरह इमाम अल्लाह की किताब भी है, इसी तरह इमाम सिरात मुस्तकीम भी है, इसी तरह कुरान में जितनी खूबियां हैं, जितने नाम हैं, इसी तरह इमाम अल्लाह का इस्म आज़म भी है। तो सारी खूबियां इमाम की तरफ आती हैं और जमा हो जाती हैं। इसी माना में कहा गया कि कुल शैन आसाइना फी इमाम मुबीन, हर खूबी, हर चीज़, हर इस्म, हर सिफत, हर आला मानी सब इमाम में है। तो कुल शैन आसाइना फी इमाम मुबीन में आप उसकी तरफ नहीं जाए कि दरख्त भी इमाम में है, पहाड़ भी इमाम में है, दरिया भी इमाम में है, और नबातात, हैवानात, जानवर, सारे आम इंसान इमाम में हैं। ये मकसद नहीं है इसमें आला चीजों का जिक्र है, आला चीजों का जिक्र है, आला हकीकतें, आला नाम, आला खूबियां और खुदा की चीजें, खुसूसन जो चीजें खुदा के लिए हैं। सारी चीजों को खुदा नहीं लेता है। मेरा घर जब कहता है, इस घर को नहीं कहता है, किसी और घर को नहीं कहता है, गिरजा को नहीं कहता है, बुतखाने को नहीं कहता है। एक मखसूस घर का इसमें जिक्र है। और मेरी किताब जब कहता है तो बहुत सारी किताबों को छोड़ देता है, एक खास किताब का इसमें जिक्र है। और इसी तरह इमाम के ज़ात में जितनी खूबियाँ हैं वही अल्लाह की हैं। तो देखा आपने कि वकुल्ल शैइन आसाइनाहू फी इमाम मुबीन की तशरीह आपने की है, या किसी आपके उस्ताद ने की है, या अभी तक ये काम अधूरा है। मैं समझता हूँ ये काम अधूरा है। तो इसी तरह बहुत सारी आयात हैं जिनकी वजाहत की ज़रूरत है, जिनकी तावील की ज़रूरत है। ज़िंदगी सर्फ हो जाती है। ये कुरान की अजमत का सबूत है। कुरान कोई मामूली किताब नहीं है कि कोई शख्स उसको खोले और पढ़े और समझे और बात ख़त्म, ऐसा नहीं है। वो अल्लाह की बे मिसाल किताब है, अल्लाह की बे नज़ीर किताब है। उसमें बहुत बड़ी बड़ी हिकमतें हैं और उसकी हिकमतें फर्श से अर्श तक पहुंच जाती हैं एकदम से। किसी एक हिकमत को लें तो ये हिकमत आपको अर्श तक पहुंचाएगी, यानी इसके आखिरी मानी अर्श पर आपको मिलेगी।